मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 17 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों, विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की बस अगले सप्ताह क्या इसी सप्ताह के रविवार से शुरू होने वाली क्लासेस में एडमिशन लिया है। इनका नाम है मनोज सेन, आप भिंड मध्य प्रदेश से हैं। तो मनोज, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब आइए हम लोग कुछ दूसरे इश्यूज पर बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पहली बात तो मैं आपको एक सूचना दे दूं, कल मेरे पास कुछ मेल आए थे और उसमें मैं अभी YouTube पर एक मेरा छोटा सा लेक्चर डाला गया है कि एनसीईआरटी की किताबों को कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ना चाहिए। मित्रों, बहुत गंभीरता और बड़ी संवेदनशीलता के साथ मैंने पॉइंट्स तैयार किए थे और वो अब आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। तो उन्होंने मुझे मेल लिखा कि सर, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और प्लीज अगर आप इसे अपने डेली ऑडियो लेक्चर में बता दें तो बहुत से लोगों को पता चल जाएगा और वो इसका फायदा उठा सकेंगे। तो मित्रों, उनके इस भावना का मैं पूरा सम्मान करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं इस सलाह के लिए, क्योंकि इससे समझ में आता है कि उनकी जो चेतना है वो दूसरों को भी फायदा पहुंचाने की है, लाभ पहुंचाने की है। तो मित्रों, उनके इस भावना का सम्मान करते हुए ही मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं कि यूट्यूब पर अभी तो 3-1 दिन पहले ही एक प्रोग्राम मैंने डाला है एकेडमी ने, और वह है कि एनसीईआरटी की किताबों को कैसे पढ़ा जाए। तो आप सब जो भी जरूरत समझते हैं वही से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा अपने उन विद्यार्थियों से, विशेषकर जो कुछ दिनों के बाद ही क्लासेस में यहां भोपाल पहुंचने वाले हैं। लेकिन डेफिनेटली, जैसा कि मैं लगभग रोजाना ही ये बात कह रहा हूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यह बात हम सब पर लागू होती है जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, यूं कह लीजिए कि कुछ सीखना चाहते हैं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से तैयारी करने के बारे में कुछ बातें की थी कि आपको अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए। देखिए, अगर सच में आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अगर आप नहीं बदलना चाहते, आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं, फिर बात बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर परफेक्ट है तो उसको डेवलप तो किया जा सकता है, क्योंकि राम भी आफ्टर ऑल एक राजकुमार ही थे, भगवान बन गए। कृष्ण एक ग्वाला थे, वो भी भगवान बन गए। तो लिमिट तो बनने की और सुधरने की और परिष्कृत होने की कोई होती नहीं है, उस रूप में भी सोच सकते हैं। तो यदि आप सचमुच में कुछ विशेष करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि जो कहा जा रहा है आप उसका पालन करें, क्योंकि केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज डू दैट, एटलीस्ट कुछ तो करने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो फिर आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो उसमें एक पॉइंट मैं खासकर मेंशन करना चाहूंगा, और वो ये कि आप अपनी जरूरत की मेडिसिन रखना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। होता यह कि देखिए, हम सबको कुछ अलग अलग तरह की दवाइयों की लगातार जरूरत पड़ती रहती है। किसी को सिर दर्द बहुत जल्दी हो जाता है या शरीर में दर्द हो जाता है, किसी को वॉमिटिंग होने लगती है, किसी के पेट में दर्द हो जाता है। तो इस तरह की जो सामान्य सी बीमारियां होती हैं, थोड़े समय के लिए होती हैं, इस तरह की जो मेडिसिन आप जो यूज कर रहे हैं डॉक्टर से सलाह करके, वो आपके पास होनी चाहिए, भले उनका उपयोग न करना पड़े। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपको दवाइयों की जरूरत ही न पड़े। लेकिन यदि मेडिसिन हमारे पास होता है तो क्या है कि एक तो हमको कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है, अगर कुछ ऐसा संकट आया तो हमारे पास तुरंत उसके उपाय हैं। दूसरी चीज जो उससे भी बड़ी बात है मित्रों, कि समय खराब नहीं होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके सिर में दर्द है, राइट, लेकिन आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, हल्का सा फीवर है, क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक कुछ भी थोड़ी सी दवाई से वो हल हो सकती थी और आप फिर पूरे लगन के साथ क्लास अटेंड कर सकते थे। लेकिन अब दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा विभाजित हो गया है, बीमारी की तरफ चला जा रहा है, बार बार उसकी याद आ रही है, क्लास में मन नहीं लग रहा है, दोस्तों से बातचीत करने में भी मन नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपने समय का दुरुपयोग ही कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि जो उपयोग होना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। आफ्टर ऑल, आप एक उद्देश्य से आ रहे हैं और उस उद्देश्य को पाने के लिए आपको अपनी चौतरफा तैयारी करनी होगी, करनी चाहिए। तो मित्रों अपनी मेडिसिन आप डेफिनेटली रख लें, जो जो आपकी जरूरत की दवाइयां होती हैं। और मित्रों जब आप वहां से चलें तो चलने की जो आपकी यात्रा होगी, अभी मैं उसके बारे में बहुत थोड़ी सी बातें करूंगा, वक्त उतना नहीं है, फिर हम लोग कल बातें करेंगे उसके बारे में। तो जब आप चलें तो अपने दिमाग को आप तैयार कर लीजिए कि मुझे इस जर्नी को एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। अगर राम 14 वर्ष के वनवास को एंजॉय कर सकते हैं, पिता दिन मोहि कानन राजू कह सकते हैं, नहीं कहते हैं कि पिता ने मुझे 14 वर्ष का कानन वासु दिया हुआ है, कानन में रहने के लिए कहा, कहे कानन का राज्य दिया है उन्होंने, तो जंगल का राजा बना करके मुझे भेज रहे 14 साल के लिए। आप भी मान करके चलिए कि मुझे 15 दिनों के लिए जाना है और कुछ पाने के लिए जाना है। अपने मन को खुशी से भरिए, उत्साह से भरिए, उल्लास से भरिए, उत्तेजना से भरिए कि मुझे कुछ पाने के लिए जाना है। और ये मान करके चले कि मुझे अपने इस पूरे की पूरी जर्नी को, जैसे ही मैं घर से निकलूंगा, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर के, अपने ईश्वर को प्रणाम करके से लेकर के और वापसी तक लगातार मेरी जो यात्रा होगी, यात्रा का जो एक एक पल होगा वो बड़ा सुनहरा होगा, बहुत ही यादगार होगा और बहुत ही सुखद होगा। मैं अपने एक एक पलों का उपयोग करूंगा, जर्नी का भी मैं उपयोग करूंगा, केवल सुख की दृष्टि से नहीं, केवल प्राकृतिक दृश्य को देखने की दृष्टि से नहीं, बल्कि लोगों से संपर्क बनाने की दृष्टि से, लोगों का सहयोग करने की दृष्टि से, लोगों से सहयोग लेने की दृष्टि से और लोगों के साथ बातचीत करके बहुत कुछ सीखने की दृष्टि से भी। तो मित्रों ये जो पॉजिटिव तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, आप अपने दिमाग में डालना शुरू कर दीजिए। कल मैं इसके बारे में कि आपको अपनी जर्नी की कैसे शुरुआत करनी है और कैसे आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, मतलब मैं व्यावहारिक स्तर की बात कर रहा हूं, है ना, मैं तकनीकी स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। दोस्तों आज हम मुख्य विषय के रूप में भूखमरी पर बात करेंगे, हंगर पर कुछ बातें करेंगे। आइए सबसे पहले हम थोड़े से न्यूज को देख लेते हैं। न्यूज आप लोगों ने सुनी ही होगी मित्रों, जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज एक ही मुझे सच पूछे तो जान पड़ती है और वह है कि अभी जो युद्धपोत INS किल्टान नेवी को सौंपा गया है। आपने देखा दूरदर्शन न्यूज में भी काफी ये प्रोमिनेंटली बताया गया था और फिर आकाशवाणी समाचार में भी ये बात थी और अखबारों में भी इसको काफी जगह मिली है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो INS किल्टान है, इस तरह के प्रश्न प्री में पूछे जाते हैं, मेंस में नहीं लेकिन प्री में पूछे जाते हैं और यहां तक कि सिविल सर्विस में भी पूछ लिए जाते हैं। तो जो किल्टान है मित्रों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये पनडुब्बी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ना ये दिमाग में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है और सिविल सर्विस इसी तरह से फंसाने की कोशिश भी करता है। ये बेसिकली पनडुब्बी नहीं है, यह युद्ध पोत है, यानी कि यूं कह लीजिए कि लड़ाकू जहाज है, ये पानी का जहाज है। तो पानी के जहाज को जहाज कहते हैं और जो हवा में उड़ता है उसको विमान कहते हैं हिंदी में। तो दोस्तों ये सबमरीन हंटर है, ये पनडुब्बियों का मुकाबला करता है, पनडुब्बियों को तबाह करता है, उनसे युद्ध करता है। और बेसिकली ये जो किल्टान है ये इतना मॉडर्न है कि यह रासायनिक हथियार, जैविक हथियार और परमाणु इन सब हालातों में भी लड़ने में सक्षम है और ये हमारा स्वदेशी युद्धपोत है, भारत में ही बनाया गया है। और इसकी जो एक बहुत बड़ी खासियत है मित्रों, वह है इसकी बॉडी जो कार्बन फाइबर से बनी हुई है, जिसमें कभी जंग नहीं लगती। और चूंकि बॉडी इसकी कार्बन फाइबर से बनी हुई, जो बहुत ही हल्का पदार्थ होता है, तो इसका वजन भी जो सामान्य सबमरीन, जो सामान्य युद्धपोत होते हैं, उससे लगभग 100 टन कम हो गया है। सोचिए 100 टन उसका वजन कम हो गया है। और जब वजन कम होता है तो बटने चले कि उसकी स्पीड अधिक हो जाती है, क्योंकि अब ज्यादा बोझ लाद करके तो चलना नहीं है। हम भी जब पतले दुबले होते हैं तो बड़े तेजी से चलते हैं, गांधी जी की तरह, लेकिन अगर मोटे थुलथुल हो गए तो चलने में काफी दिक्कत होती है। तो इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है और दूसरा है कि चूंकि इसकी जो बॉडी है वो नॉन मेटल है, तो फिर राडार वगैरह में भी पकड़ में आने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो ये थोड़ी सी जानकारियां हैं जो आपको किल्टान के बारे में मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में तो जो दूसरी खबर थी, छोटी सी खबर है लेकिन इस पर हम लोग अभी बात नहीं कर सकेंगे, आप लोग अपनी तरफ से कोशिश कीजिए अगर कुछ हासिल कर सके, तो वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है मुझे पता नहीं क्यों बहुत अपील करती है कई दृष्टि से। पहली बात तो है कि ये ग्रामीण जो आर्थिक स्थिति है, ग्रामीण जो अर्निंग है, आय है ग्रामीण क्षेत्र की, उनको बढ़ाने की क्षमता इसमें काफी है। फूड प्रोसेसिंग है कि किसान जो चीज पैदा कर रहे हैं उसको प्रोसेस्ड किया जाए, उसको बेचे, वो टमाटर न बेचे बल्कि टमाटर का सॉस बना करके बेचे, वो आलू न बेचे आलू के चिप्स बना करके बेचे। अब ये किसानों के एक स्तर पर तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उनके क्षेत्र में इस तरह के उद्योग लगा दिए जाएं तो उनको अपनी वस्तु उत्पाद का की काफी अच्छी कीमत मिलने लगेगी। दूसरी चीज है इसमें लघु मध्यम दर्जे के उद्योगों की भी बहुत संभावना, यानी कि रोजगार भी इसमें बहुत पैदा हो सकते हैं, और भारत को मित्रों रोजगार की बेहद जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता रोजगार की है। और हमारा जो अभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है मित्रों बहुत ही निम्न स्तर पर है, मतलब बहुत ही लो लेवल पर है, इसमें बहुत गुंजाइश है। दो क्षेत्र रोजगार के लिए भारत के बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और दूसरा पर्यटन, अकूत संभावनाएं हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका हम उस तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों अखबार की छोटी सी एक दो खबरें और हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो यह है कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने अभी एक निर्देश दिया है दिल्ली प्रशासन को, ये कंटेंट के रूप में है आप थोड़ा सा याद रखिएगा। उन्होंने दिया है कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चुनाव उनाव हो रहे हैं और इसमें जो कैंपस में जो मतलब ये इंश्योर करें कि चुनाव वगैरह के समय में कैंपस में देखा है ना आपने लोग कन्वेंसिंग करते समय बैनर लगा देंगे, पोस्टर्स लगा देंगे, पंपलेट्स बांटेंगे, चिपका भी देते हैं, ये न लगने पाए। ये बेसिकली यूं कह लीजिए कि स्वच्छता को इंश्योर करने के लिए है, जिसका संबंध कहीं ना कहीं पर्यावरण के नुकसान से भी है और प्रदूषण से भी है, राइट। और उसने ये भी कहा है कि इसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो भी इसमें मदद करे, एक अच्छी बात दिल्ली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कही है। दोस्तों हमें मुझे मालूम है कि जब पहले चुनाव हुआ करते थे 70 के आसपास में, तो बाप रे विधानसभा लोकसभा के चुनाव के समय में क्या पूरे के पूरे शहर की दीवारें डंगी पटी रहती थी। अब आप देखिए कि बिल्कुल क्लीन मिलती है, चुनाव आयोग ने जब इसे कानून बनाया है तब से कुछ इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। एक और बात है जो मैं कहना चाहूंगा मित्रों कि हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी हैं उन्होंने एक बहुत अच्छी डिमांड की है, ये भी आपको कंटेंट के रूप में कहीं नोट कर लेना चाहिए। उन्होंने डिमांड ये की है कि जिस तरह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है उसी की तर्ज पर एक नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर चिल्ड्रन बनाया जाना चाहिए, नेशनल ट्रिब्यूनल फॉर चिल्ड्रन, और उसका काम हो कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण वो रख सके। तो एक अच्छी डिमांड उन्होंने की है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और जब इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप इसे कोट कर सकते हैं। मित्रों अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, भुखमरी पर, और ये विषय मैंने दोस्तों इसलिए चुना है कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल यानी कि वैश्विक हंगर यानी कि भूख इंडेक्स का मतलब है संकेतक कि दुनिया में भूख की क्या स्थिति है, और उसमें उसने टोटल जो है वो 119 देशों का उसने जारी किया है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें भारत का स्थान 100वां है, 119 में 100वां। सोच करके देखिए कि भारत में अभी भी भुखमरी की कितनी बुरी स्थिति है। और मजेदार बात यह है, या यूं कह लीजिए कि मजेदार तो नहीं कहना चाहिए, मुंह से निकल गया, दुर्भाग्यजनक बात यह है मित्रों कि इसने सन 2006 में इंडेक्स जारी करना शुरू किया था, 2006 में, और हर साल ये जारी करता है। उस समय भी जो हमारी स्थिति थी इसी के आसपास थी, तब भी हम 100 पर ही थे, पिछले साल जरूर हम 97 पे थे, अब फिर 3 और खसक करके 100 पर हो गए हैं। भारत सच पूछे तो इसको इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा मित्रों, भारत जैसा देश आप देखिए कि फूड प्रोडक्शन के मामले में हम सरप्लस हैं, अनाज की हमारे पास कमी नहीं है। अखबारों में हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं कि यहां इतना अनाज सड़ गया, अनाज सड़ रहा है, राइट। फिर जो फूड है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में शामिल हो चुका है, सोचिए भोजन उपलब्ध कराना, प्राप्त करना हमारा फंडामेंटल राइट्स हो चुका है, ये हमारा वैधानिक अधिकार भी है, चीजें भी उपलब्ध हैं। इसके बावजूद हमारा देश भूखमरी का इतनी बुरी तरह से शिकार है, मतलब ये सोचने की बात है कि फिर हम कर क्या रहे हैं। अगर आप राजनीतिक स्तर पर जाएं, तो राजनीतिक स्तर पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1970-71 की जो राजनीतिक परिदृश्य थे वो तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि उस समय जब हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी हुआ करती थी तो उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ का नारा। और उससे भी पहले ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो आदेश की आजादी के बाद आधी रात को जो अपना पहला भाषण दिया है उसमें भी उन्होंने कहा है गांधी जी के उस सपने को हमें पूरा करना है, शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, कि जो पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है उसके आंसू को हम पोंछ सके। मित्रों, सबसे बड़ा आंसू गरीब का क्या होता है, भूख से निकलता है, उसका तो पेट भर जाए बाकी उसके पास आंसू के लिए ज्यादा खजाना है नहीं। वहां से लेकर के और हम यहां तक पहुंच गए हैं और लगातार गरीबी हटाओ की बात कही जा रही है, लगातार कही जा रही है, लेकिन आज तक हम जरा भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आप सोच करके देखिए कि मतलब 12 साल पहले, चलिए अब हम ले लें, जब से यह हंगर इंडेक्स आया है 12 साल पहले हम जहां थे लगभग लगभग आज भी हम वहीं हैं, जबकि इस बीच में हम दावा करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हमारी इतनी हो गई है, देश का आर्थिक विकास जबरदस्त रूप से हो रहा है, हमारा इतना निर्यात बढ़ गया है, हमारे यहां इतने मिलियनेयर्स करोड़पति लखपति हो गए हैं, हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा का भंडार आ गया है। तो भंडार है किसके पास? ये जो विकास है, विकास का फायदा पहुंच किनके पास रहा है, किनको मिल रहा है? अगर हम अपनी भुखमरी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों इसके बहुत से एंगल हैं जिस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार किए जाने की जरूरत है। मतलब हमारे अपने ही देश के 5 साल से कम उम्र के लगभग 20% बच्चे क्षय के शिकार है। क्षय तो एक रोग होता है जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है दोस्तों वास्टिंग, WASTING, हिंदी शब्द इसका एग्जैक्ट नहीं है, क्षय कह सकते हैं, मतलब जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारी हाइट रुक जाएगी, हमारा लीवर कमजोर हो जाएगा, हार्ट का ठीक से विकास नहीं होगा, मानसिक स्थिति, मानसिक परिपक्वता नहीं आएगी, तो जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होते। और इसका मेन रीजन है, सबसे बड़ा जो कारण होता है वह है भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाना। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको बहुत ही क्रिटिकली पॉइंट वाइज आपको तैयार करना है। मैं आपको एक एडिटोरियल कमेंट और एक आर्टिकल इससे रिलेटेड आज प्रोवाइड कर रहा हूं, उससे मैं चाहूंगा कि आप सब जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें नोट करें। तो दोस्तों अब मैं आता हूं ईमेल पर, अखबारों की क्लिपिंग्स तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, शुभम प्रियदर्शी बोकारो झारखंड से, दिवाकर गुप्ता दिल्ली से, शैलेंद्र कुमार शीतलपुर उत्तर प्रदेश से, राधा कृष्ण, अरविंद कुमार उपाध्याय, शैली अग्रवाल गुना मध्य प्रदेश से, और कुमार गौरव मुजफ्फरपुर बिहार से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।